ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। देश से गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। प्रमाण दूसरा संशोधन विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा से पारित। चीन के वुहान में फंसे हुए नेपाली नागरिकों को कल लाया जा रहा है काठमांडू। और 3 भारतीय नागरिक भी कोरोना वायरस की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार ने देश से गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य के साथ कदम बढ़ाए हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने के संदर्भ में आज प्रतिनिधि सभा की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सदस्य चाहे सरकार के हों या विपक्ष के, सबका दायित्व देश का विकास करना ही है। इस बात का जिक्र करते हुए कि इस दौरान देश उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाले उत्कृष्टतम 10 देशों की सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से लगातार देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% से ऊपर है। अपने संबोधन में उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसने, बहुचर्चित ललिता निवास जमीन घोटाले की निष्पक्ष छानबीन की प्रतिबद्धता जताते हुए पिछले 2 सालों में हुए सरकार के कामों का ब्यौरा पेश किया था। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने प्रमाण दूसरे संशोधन विधेयक 2076 को पारित किया है। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री भानुभक्त ढकाल द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया। बैठक में शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति की सभापति जयपुरी घरती ने शिक्षा संबंधी कुछ नेपाल ऐनों के संशोधन विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2076 पेश किया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक फागुन 6 मंगलवार को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। कोरोना वायरस से फैलती महामारी की दहशत के बीच चीन में फंसे हुए नेपाली नागरिकों को नेपाल लौटाने के लिए नेपाल एयरलाइंस का विमान आज चीन के वुहान के लिए रवाना हुआ है। अपने देश लौटने के लिए दूतावास में अर्जी करने वाले 186 नेपाली नागरिकों को लेकर विमान कल सुबह 3 बजे काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर अवतरण करेगा। चीन से लौटने वाले नेपालियों में से यदि किसी को बीमार पाया गया तो उसे टेकू में स्थित शुक्रराज हॉस्पिटल में दाखिल किया जाएगा और बाकी लोगों को भक्तपुर खरीपाटी क्वारंटाइन में 15 दिनों तक रखा जाएगा। इस दौरान उनके स्वस्थ होने की तसल्ली हो जाने के बाद ही उन्हें अपने घर भेजा जाएगा। इन बातों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सभी से बिल्कुल भी न घबराने का आग्रह किया है। प्रदेश नंबर 1 के प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी ने कहा कि प्रदेश सरकार 2 वर्षों की छोटी समयावधि में जनता का दिल जीतने में सफल हुई है। आज मोरंग के विराटनगर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर में आयोजित प्रदेश सरकार की दूसरी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुरक्षा, विकास, निर्माण, सुशासन तथा समृद्धि कायम करने में प्रदेश सरकार सफल हुई है। इसी अवसर पर प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय ने कहा कि सीमित स्रोत और साधनों के बावजूद प्रदेश सरकार की 2 वर्षीय कार्यकाल उल्लेखनीय और परिणाममुखी है। नेपाल ऑस्ट्रेलिया औपचारिक कूटनीतिक संबंध आज से 60वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर दोनों देशों के परराष्ट्र मंत्रियों ने पारस्परिक संबंधों को सुमधुर बताते हुए बधाई तथा शुभकामना संदेश आदान प्रदान किया। संदेश में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यवाली और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिसे प्याने ने पारस्परिक विश्वास, समझदारी और सहयोग पर आधारित दोनों देशों और जनता के बीच के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
14-15
बजारमा नयाँ कि छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेना ने विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्लस टू में पढ़ रहे 500 विद्यार्थियों को एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान स्कॉलरशिप प्रदान किया है। आज राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष तिमिल सिन्हा ने पाकिस्तान द्वारा नेपाल के शैक्षिक विकास में दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति के कारण दोनों देशों के बीच का संबंध और अधिक प्रगाढ़ बनेगा। मौके पर नेपाल के लिए पाकिस्तान के राजदूत मजहर जावेद ने युवा वर्ग को विकास का संवाहक बताते हुए कहा कि इन्हें शैक्षिक रूप से सबल बनाने के लिए उनका देश हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में छात्रवृत्ति की संख्या को बढ़ाया जाएगा। बता दें कि सन 2013 से काठमांडू स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास हरेक साल विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी 10,000 रूपये की छात्रवृत्ति प्रदान करती आ रही है। दो दशकों से भी ज्यादा समय तक बंद रहे पाटन विमानस्थल पर पक्की सड़क बनाने का काम संपन्न होने के साथ ही अब इसके संचालन का इंतजार किया जा रहा है। सुदूर पश्चिम के पहाड़ी जिले बैतड़ी, दारचूला, डडेलधुरा और बझांग जिलों के मध्य मार्ग में पड़ने वाले पाटन विमानस्थल के संचालित होने से न केवल स्थानीयों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। बता दें कि पाटन में 2032 साल में विमानस्थल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2035 साल से हवाई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन ये सेवा 2052 साल में बंद हो गई थी। सप्तरे के बोध बरसाइन 5 की जाजर में मुस्लिम धार्मिक प्रवचन शुरू हुआ है। भारत के नई दिल्ली स्थित मरकट जाने मस्जिद के मौलाना साद साहब ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर विभिन्न देशों के 2,00,000 से अधिक मुस्लिम धर्मावलंबी सहभागी हुए हैं। इसकी जानकारी मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम अंसारी ने दी है। मोरंग के विराटनगर महानगर पालिका 4 में ट्रिपर ने मोटरसाइकिल को ठक्कर दी, जिस वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। विराटनगर थरान सड़क खंड में ट्रिपर के टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार सप्तरी पत्रा के 22 वर्षीय हरेराम साहा और सिरहा जिला सुखीपुर के 19 वर्षीय ओजीर रायन की मौत हो गई। इसकी जानकारी प्रहरी ने दी है। इसी तरह आज ही मकवानपुर की मनहरी में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से रूपनदेही तक देही गांव पालिका 3 के 26 वर्षीय अकबर खान की मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में फैले कोरोना वायरस से 3 भारतीय नागरिकों के भी संक्रमित होने की खबर है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जापान में डायमंड प्रिंसेस जहाज पर सवार 3 भारतीय भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। जहाज पर फंसे ये भारतीय सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाया जाए। दरअसल जापान के तट पर खड़े क्रूज जहाज डायमंड प्रिंसेस में हजारों मुसाफिर और क्रू मेंबर मदद के इंतजार में हैं। इस डायमंड प्रिंसेस शिप पर सवार 3 भारतीय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और भारतीय दूतावास इन पीड़ितों के संपर्क में है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। देश से गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। प्रमाण दूसरा संशोधन विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा से पारित। चीन के वुहान में फंसे हुए नेपाली नागरिकों को कल लाया जा रहा है काठमांडू और 3 भारतीय नागरिक भी कोरोना वायरस की चपेट में। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।